अभी हमारे सामने एक हमारे ब्राह्मण परिवार का, स्पेशली स्पार्क फैमिली का सबसे छोटा भाई, 9 साल का मयंक, हमें ब्राह्मण जीवन में, स्टूडेंट लाइफ का हमें एहसास कराएगा कि हमें कैसे पढ़ाई पढ़नी है, है ना। तो मैं स्टेज पे बुलाती हूँ मयंक को।
ओम शांति। विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ जीवन है, जीवन का अनमोल ये पल है, इस पल को जानो तुम, मूल्य पहचानो तुम, मंजिल पाएंगे तभी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ जीवन है, दिल लगा कर हमको पढ़ना है, अच्छे अंक ले आगे बढ़ना है, बढ़ते ही रहना हाँ, राहों में थकना ना, पीछे ना हटना कभी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ जीवन है, उत्तम लक्ष्य हासिल करना है, विद्यालय का गौरव बनना है, सहपाठी जागे हम, आलस को त्यागे हम, कर ले प्रतिज्ञा अभी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ जीवन है, बाबा मामा को राजी करना है, शिव बाबा के दिल पर भी चढ़ना है, भाग्य बना ले हाँ, मौका गवाए ना, तब तो खुश होंगे सभी। बोलो विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ जीवन है, विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ जीवन है। हम शांति।
थैंक यू मयंक, और हम सब तालियों से उसका धन्यवाद करेंगे। अभी 10 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठेंगे। छाया दीदी हम सबको मेडिटेशन कराएगी, और मैं भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा के प्रेम के गीत चलाएं और बीच बीच में साइलेंस का हम अनुभव करें, ऐसा ठीक है? ओम शांति। आप सबको जैसा पता ही है कि आज का ये सेशन हमारा बाबा के उन गुप्त रत्नों के साथ है जो यज्ञ की लिविंग लाइब्रेरीज के साथ रहे। मैं लिविंग लाइब्रेरी को थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। लाइब्रेरी माना जहाँ किताबें हैं, है ना। लिविंग लाइब्रेरी माना चलती फिरती किताबें, है ना। हमारे रमेश भाई साहब, हमारे जगदीश भाई साहब, हमारी दादी, जानकी दादी जी, बड़ी दादी, है ना, सभी लिविंग लाइब्रेरीज हैं यज्ञ की। और जो ये हमारे तीन महारथी भाई हैं, तीन गुप्त रत्न मैं कहूंगी बाबा के, जिनका स्नेहा बहन का जिनका संकल्प था कि आप सब उनसे मिले और उन्हें जाने, उनके अनुभवों को जाने जो बड़ों के अंग संग रहे। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमारे साथ है नागेश भाई। हम सब मिले हैं नागेश भाई से। फिर हमारे साथ बैठे हैं संजय भाई, पांडव भवन लिटरेचर डिपार्टमेंट। श्रीकांत भाई, कौन नहीं जानता श्रीकांत भाई को यहाँ पर। हाँ गुड, ये अच्छा है, एक भी हाथ नहीं खड़ा। श्रीकांत भाई स्पार्क के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर। सभी, मुझे लगता है आगे मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, है ना। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं नागेश भाई जी से। हमने उस दिन सुना जब रमेश भाई साहब का ट्रिब्यूट दे रहे थे कि दादी ने कहा मैं अपनी एक आंख की जिम्मेवारी आपको सौंपना चाहती हूँ, है ना, रमेश भाई साहब के लिए उन्होंने कहा। तो भाई जी, हम जानना चाहेंगे आप ये जिम्मेवारी लेते वक्त आपके क्या संकल्प थे। ऐसा संकल्प आया कि थोड़ा सा पीछे हट जाएं, कहीं हमें भी फिर हर रोज डांट सुननी पड़ेगी। आपके क्या संकल्प चले, क्या दृढ़ता थी अंदर, हम जानना चाहेंगे।
ओम शांति। मैंने सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। जैसे कि अभी तक मैं क्लास करता हूं लेकिन प्रोफेशनल नहीं क्लास करता हूं, अक्सर कर क्लास करने वालों का क्लास करता हूं, ताकि आज तक मेरे मत पांडवन में रिकॉर्ड है, जो भी क्लास करने वाले बहने भाई है उनका क्लास मुझे बिटाते नहीं, क्योंकि इसके लिए नहीं बिटाते, जो उन्होंने जो क्लास करता है उस बात को लेकर के उसको चलाता हूं मैं, एक विषय है। और दूसरा, मुझे एक गौरव की बात है, जो बचपन से दादियों का नजर हमारे ऊपर था और दादियों ने बहुत कोशिश करती थी कि हमको हमारे से कुछ सेवा कराए, और उस विश्वास के कारण दादियों ने हमको मधुबन में आने का एक सौभाग्य प्रदान किया। और मधुबन में भी आया तो दादी ने पहला बोला कि दादी के प्रति बहुत स्नेह थे, ऐसे स्नेह थे कि बहुत एकदम मन एकदम क्लोज। दादी के पास 24 घंटे में कभी भी दादी के पास हम जा सकते थे, दिन दिन रात रात, उस समय डे नाइट सेवा चलते थे। और जब मधुबन में आए तब दादी 89 से 99 तक 10 साल, जो पूरा 10 साल हमको कमरे में सोने के लिए नहीं दिया, हमारे से इतना सेवा लिया 24 घंटा सेवा लिया है। और उस समय जैसे कि पीस पार्क लिया, और जब डेवलप हो रहा था पीस पार्क लिया, तब दादी ने कहा कि आप लोग कमरे में कैसे नींद आते हैं, आप लोगों को जाओ उधर पीस पार्क लिया है उसको जमीन का शुद्धिकरण करो, रात में जाके उधर बैठो। फिर रात को जाकर के पीस पार्क का जो लिटरेचर का गुफा है उस गुफा में बैठते थे हम, दो तीन कुमार थे, रात को 10-11 बजे जाते थे, फिर सवेरे 4-5-6 बजे तक वहां बैठते थे, फिर 6 बजे आके दादी को मिलके कमरे में चले जाते थे, नहीं तो दादी इंतजार करती थी रात को गए आए क्या नहीं, या पैरा वालों को बोल के समाचार पूछती थी इस प्रकार से। उसके बाद जो ज्ञान सरोवर का निर्माण चला, और ज्ञान सरोवर का निर्माण चलते समय भी हम तकरीबन 1.5 साल ज्ञान सरोवर का पेड़ के नीचे सोए हैं। जैसे कि गर्मी का मौसम पेड़ के नीचे सोते थे, और ठंडी का मौसम बरसात का मौसम में बस में सोते थे, क्योंकि काम चल रहा था। और इस प्रकार क्योंकि इमरजेंसी किसी को कुछ हुआ तो उसको पालनपुर ले जाने का, अहमदाबाद ले जाने का ये काम करते थे। और उसके बाद शांतिवन का निर्माण होने लगे, और शांतिवन का निर्माण के समय जो रमेश भाई का महादानी कॉटेज में जो पेड़ है नीम का पेड़, उस पेड़ का नीचे 3 साल सोए हैं। उसे पूरा जंगल थे, और बालू चीता जो किचन है, जो VIP किचन, वहां तक बालू चीता आते थे। और कई बार नील गए, जो घोड़े जैसा होते नील गए, वो भी हमारे ऊपर से कूद के भी गए हैं। जमीन में सोते थे, गर्मी का मौसम में जमीन में कुछ चटाई डाल के सोते थे, नहीं तो ठंडी का मौसम में एक प्लास्टिक का पलंग में सोते थे। इस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत किया। और आज हम देखते हैं कि उसी पेड़ के नीचे जो महादानी कॉटेज बना, और आज भी हमारा जीवन, जब से शांतिवन का जगह जमीन खरीद किया उस समय से उसी पेड़ के नीचे हमारा जीवन गुजारते आए हैं। ये भी एक सौभाग्य की बात है। और दूसरा विशेषता, दादी ने हमको बाबा से बात करना सिखाया। क्योंकि हम सोचते थे दादी सब बाबा से बात करते हैं, कभी दादी देखते हैं, अभी आप सीनियर को देखते हैं, कभी बाबा के पास जाते हैं, बाबा कमरे में जाते हैं, कुछ कहीं भी जाते हैं, सभी छुट्टी लेने के लिए जाते हैं, कुछ बाबा उनसे बात करते और वो बात हमको बताते हैं। और हमको भी एक इच्छा होती थी कि बाबा से कैसे बात करें, दादी कैसे बात करते और हमको भी कैसे बात करना चाहिए, ये इच्छा होती थी। और कुछ भी प्रश्न उत्तर लेकर के कारोबार में तो दादी हमको बुलाया इधर, लेकिन कुछ भी समस्या होते तो बाबा से हम कैसे बात करें, क्योंकि दादी बैठे हैं, दादी उनसे बात करते थे, फिर दादी कुछ जवाब देती थी। उसके बाद उनको भी, दादी का मन में भी इच्छा होता है कि इनको भी तैयार करे, कितना दिन मेरे से जवाब पूछेगा। और उस हिसाब से दादी हमको कहती थी कि आप बाबा से पूछो, जाओ बाबा कमरे में जाओ बेटो और बाबा से पूछो, ऐसे कहती थी। और उसके बाद दो दो तीन तीन दिन बाबा कमरे में हम बैठते थे, और बाबा कमरे में बैठ के बाबा से बात करने का सीखते थे। और कुछ भी जवाब आया तो फिर दादी को आके बताते, मुझे ऐसे संकल्प आया, मैंने बोले बाबा का ठीक जवाब नहीं है, फिर जाओ बाबा के पास, फिर बैठते थे, भूखा भूखा बैठते थे। फिर उसके दो दिन बाद, तीन दिन के बाद जो दादी का जो सवाल का प्रश्न का उत्तर बताते थे, हाँ ये बाबा का टीचिंग है आपका। इस प्रकार दादी ने हमको बाबा से बात करना सिखाया, और एक सौभाग्य। और उसी प्रकार दादी का एक इच्छा था, दादी का कई ऐसी इच्छाओं को पूर्ण किया हमने, जैसे कि यज्ञ का कई कारोबार होते, उस समय कुमारों को बहुत वैल्यू होता था, क्योंकि कुमारों का संख्या बहुत कम था, और उस समय कर्नाटक से 2 कुमार इधर आते थे। जब भी मधुबन में कुछ भी सेवा होता था, उतना आर्थिक परिस्थिति उतना खास नहीं होता था, और उसके लिए जो भी सेवा होता था, कुछ मकान बनने का हो या कुछ प्रोग्राम चलते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस चलते हैं, उस समय कुमारों को बुलाया जाता था। जहां जहां कुमार है वहां टेलीग्राम भेजती थी, टेलीग्राम भेज करके कुमारों को बुलाया जाता था। जैसे कि टेलीग्राम हमारा सेंटर में अपना इंचार्ज बहन के पास आते थे, उसी समय हम निकल पड़ते थे। ऐसे उस समय ट्रेन का रिजर्वेशन का अगर इंतजार नहीं करते थे, जैसे कि ट्रक में चढ़ के आते थे, कभी ट्रक में चढ़ते थे, कभी सिटी बस में चढ़ते थे, कभी बस में चढ़ते थे, कभी ट्रेन में चढ़ते थे। इस प्रकार वहां से आने में करीबन 3-4 दिन हमको लगता था, और लगने के बाद यहां आते थे, सेवा करते थे। सेवा करने के बाद जब दादी यहां से जाओ करके बोलते, तब तक यहीं रहते थे, तब जाते थे।
भाई जी, मैं यहां पूछना चाहूंगी, ऐसा मधुबन के लिए क्या खिंचाव था, क्या प्राप्ति होती थी आपको यहाँ आकर, जो आपको लगता था कैसे भी हाल में, अभी मैसेज आया तो पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, यहाँ आकर आपकी क्या अनुभूति, क्या ऐसी आपको प्राप्ति का अनुभव होता था?
जो पहले दादियों ने हमारा प्रति जो विश्वास रखा था, उसका कुछ भी हम किया तो उसका विश्वास का जो क्या बोलते हैं, उसको ऋण होते, उसको चुका नहीं पाते थे। जैसे ही दादी इतना विश्वास रख के टेलीग्राम भेजती है और हमको बुलाती है, और बुलाने के बाद हम तुरंत आते हैं, उतना ही प्यार करते, जैसे कुमारों से, कुमार के प्रति बहुत प्यार करती थी। और हमको भी कुछ सेवा करने का, जैसे जो बोलते हैं वो सेवा करके दिखाने का एक लक्ष्य हमारा होता था।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अभी मैं संजय भाई जी से पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, भाई जी को हमने निमंत्रण दिया कि भाई जी आपको आना है यहाँ पर, तो भाई जी कहने लगे और बहुत बड़े भाई हैं, आप उन्हें बुलाइए, ऐसे दूसरों को आगे बढ़ाकर खुद पीछे रहने वाले हमारे निरहंकारी भाई हैं, उनके लिए तालियां बजाएंगे एक बार। भाई जी, हमारा प्रश्न है, मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहूंगी। भाई जी ने बहुत लंबा समय दादी किचन की सेवा की है, दादी के लिए ब्रह्मा भोजन बनाना, फिर सर्व करना, उस तरह से। भाई साहब, हमारा सवाल है आपसे, जब आपको दादी किचन की सेवा ऑफर की गई कि आपको यहाँ सेवा करनी है, दादी तब यज्ञ में हाईएस्ट पोजीशन पे है ना, और आपको कैसा लगा कि मैं दादी के साथ कैसे हम वो कोऑर्डिनेशन बिठा पाएंगे, कैसे वो तालमेल बैठेगा, क्या थी मन की भावनाएं?
दादी तो बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमको ऐसा सेवा मिलेगा और हम वहाँ सेलेक्ट होंगे। लेकिन करावन हर बाबा को या दादी को पसंद, या जो भी मोहिनी बहन मुन्नी बहन जो भी है, और भी सभी दादियों का वहाँ भोजन बनता था, तो ड्रामा में ऐसा था, तो फिर मतलब पार्ट प्ले किया।
दादी को जब, दादी के लिए जब आप भोजन बनाते थे, तब क्या विशेष उसमें आप ध्यान रखते थे, मन की स्थिति और भोजन बनाते वक्त स्थूल रीति से क्या, किन चीजों का विशेष ध्यान देते थे?
हर प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखते थे, और बाबा की याद में रहकर भोजन बनाने का प्रसाद रहता था। दादी में मैंने सबसे बड़ी विशेषता ये देखी, दो विशेषताएं हैं दादी की, हमें बहुत प्रभावित किया, प्रेरणा स्रोत बना। एक तो दादी जी एक मुरली को कम से कम 5 बार पढ़ते थे, एक मुरली को, सुबह योग के बाद मुरली पढ़ के फिर डायरेक्ट क्लास में जाकर मुरली सुनाते थे। उसके बाद फिर दोपहर को जब 3 बजे 2:30 3 बजे कमरे में जाती थी, तो मुरली पढ़ के जो भी हो वो फिर रेस्ट करती थी। और दादी जी बहुत कम रेस्ट करती थी, मतलब एक तरह से निद्राजीत और अथक थी। फिर दादी जी जो है जब सोके उठती थी, 3 बजे गई 4 बजे रेडी होके फिर यीशु दादी के ऑफिस में जाना होता था, तो उठने के बाद थोड़ा चाय लेती थी, तो उस समय भी मुरली पढ़ते थे। और फिर रात्रि को सोने के समय, सोने से पहले मुरली पढ़ती थी। और दादी जी की विशेषता यह थी कि दादी जी बाबा को गुड नाइट किया और 1 सेकंड में सो जाते थे। तो इस तरह से मुरली पढ़ना भी और सुनाने की जो विधि थी वो भी बहुत अच्छे थे, आनंदित हो जाते था। मुरली का जो रस दादी जी जो सुनाते थे उसका आनंद और ही था। और इतना ही नहीं, दादी जी को मैंने देखा कि बहुत साल तक जब अव्यक्त बाप दादा मेडिटेशन हॉल में आते थे, तो दादी जी नीचे बैठ के पट में डायरी पेन लेके बाबा के पॉइंट्स को नोट करते थे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ जो है कितना द बेस्ट ऑफ पावरफुल होना चाहिए। ये दो विशेषताएं दादी जी में हमने देखा, एक तो अथक थी, निद्राजीत थी, और मुरली को कम से कम एक मुरली को वो 5 बार जरूर पढ़ते थे। और भी दादी की विशेषताएं, जैसे दादी को ऑनेस्टी और प्योरिटी बहुत पसंद था। कोई कितना भी भूल कर दे, लेकिन दादी जी को आकर सच बता दिया, या इशारे से, दादी जी उस बात को चित्त में भी नहीं रखते थे, भूल जाते थे, क्षमा कर देते थे। क्लास में भी उनको जो है सफेद यूनिफॉर्म पसंद आता था। तो ये सब दादी की तो विशेषता बहुत है, जितना कहो उतना कम है।
धन्यवाद भाई जी। अभी अगला क्वेश्चन हम श्रीकांत भाई जी से पूछेंगे। भाई जी, सबसे पहले आपकी जर्नी स्पार्क के साथ, आप कैसे जुड़े स्पार्क के साथ, और क्या आपकी जर्नी अब तक की रही?
ओम शांति। जो भी मधुबन निवासी हैं, सबकी यही एक्सपीरियंस है, सेवा किचन में मिलता है, उसके बाद फिर उसके बाद जर्नी शुरू होती है। और जब 97 में हम आए, पूरे एक वर्ष किचन में सेवा किए, सब्जी, चाय डिपार्टमेंट और वीआईपी डाइनिंग। और 98 की फरवरी महीना था, तो मुझे वहां पे जो स्पार्क की एग्जीबिशन एक्सप्लेन करने के लिए, वहां पे कोई इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाले नहीं थे, 3 दिन के लिए हमें, तभी रुपेश भाई सेवाधारी इंचार्ज थे सरोज भाई के साथ, 3 दिन के लिए भेजा था मुझे। और जब मैं सेवा में पहुंचा उस समय ऐसा था, स्पार्क में कोई भी सेवाधारी आते थे, चाहे मीटिंग में पार्टिसिपेशन होता था, रमेश भाई सिलेक्शन करते थे, बाकायदा फॉर्म जाता था, लेकिन मैं एक ऐसा सेवाधारी था जो पार्ट टाइम गया था, रमेश भाई की बिना नॉलेज से गया था। और वहां जब पहुंचा उसी दिन करीब 12 बजे रमेश भाई जी के फोन आया, तो जब मैं फोन उठाया सामने से आवाज आई, मैं रमेश भाई हूं। तो मैंने उनको, उन्होंने आगे पूछा कि आप कौन है, मैंने बोला कि मैं सेवाधारी हूं, 3 दिन के लिए सेवा के लिए आया हूं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे पहचानते हो, मैंने कहा भाई साहब मैं आपको जानता हूं, जो मुरली सुनता है और आपको जरूर पहचानता है, क्योंकि बाबा आपके नाम मुरली पे बार बार लेते हैं। तो रमेश भाई सामने से कह रहे हैं, अच्छा भाई आपकी इतनी बड़ी खूबी है जो आप मुझे जानते हो, लेकिन आप स्पार्क में सेवा कर रहे हो और अभी तक आपकी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, और मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं 4 बजे। तो मुझे लगा कि ऐसे बात कर रहे होंगे, इतने बड़े भाई थोड़ी हमसे मिलने के लिए आएंगे, मैं उस चीज को उसी वक्त कैजुअल समझ के भूल गया। लेकिन आप सुनकर खुशी होगी आपको, .4 बजे मैं ऑफिस में नहीं था, मैं चाय टोली के लिए चला गया था किचन में, .4 बजे भाई साहब आके ऑफिस में बैठे थे और मैं चाय का ग्लास लिया हूं, और जब उनके सामने देखा मुझे लगा मैं आगे जाऊं या पीछे आऊं, वो सिचुएशन क्रिएट हो गया मेरे सामने। फिर भी मैं उनको देखते ही लगा यही होंगे रमेश भाई, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं था। और जैसे उनके सामने आया तो वो मेरे को देखने लगे, अच्छा आप श्रीकांत भाई हो। और वो जो मुलाकात था, तो कभी हम लगभग आधा घंटा बातचीत किया। जो भी भाई साहब से मिले होंगे सबको पता है कि वो हर बार 2 तरीके से बात करते हैं, एक तो लौकिक बात करते हैं, आप जिस फील्ड में पढ़ाई किए होंगे या आपकी जो एक्सपीरियंस होगा, और साथ में उसको अलौकिक के साथ जोड़ के बात करते थे। तो हमारे सामने वो बातचीत हुई, मुझे उन्होंने एक बात कहा कि अच्छा आप स्पार्क में सेवा करना, और उनकी वो शब्द था, और तब से हम स्पार्क में सेवा दे रहे हैं।
सेवाधारी से हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बनने तक की जर्नी उसमें भी मेनली हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे मुश्किलें आपने फेस की, और उसमें क्या धारणाएं, क्या मन की स्थिति थी जो आपको उन चीजों से ऊपर ले गई।
देखिए पुरुषार्थ जीवन में जो चैलेंजेस तो आना ही चाहिए, बाबा ने कहा कि जब तक आप ही शरीर में हो तो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो, और इस चैलेंजेस को पार करते करते हम संपूर्ण बनेंगे। और जैसे हम उस बात को दोबारा दोहराएंगे जो भाई साहब के साथ जो मुलाकात था, आप सोचिए कि मेरे पूरे सोच और समझ को बदल दिया। मैंने उसमें भाई साहब से शेयर किया था कि हम सुन रहे हैं कि 2000 में विनाश हो जाएगा, और जो विनाश होगा तो मुझे उन्होंने पूछा था कि आप पढ़ाई छोड़ क्यों दिया, बीकॉम किया था और सीए के लिए मैं अपीयर किया था लेकिन सीए किया नहीं, वापस यहां पे आ गया था। जब उन्होंने मुझे पूछा कि आप पढ़ाई क्यों छोड़ा, तो मैंने कहा भाई साहब विनाश हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मना इससे बड़ा कम बुद्धि वाला मैंने देखा नहीं अभी तक। उन्होंने कहा कि आप हेडक्वार्टर में सेवा करने के लिए आए हो, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी सेवा कर सकोगे। और उन्होंने कहा कि आपको तो कोई लौकिक का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप सेवा कैसे करोगे। तो मैंने कहा आप इतने बड़े महान हस्ती जो लौकिक की पूरे एक्सपीरियंस है, अगर आपके साथ मिलकर सेवा करो तो मुझे लौकिक में जाने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। वो चीज उनको बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा था आप अभी बॉम्बे ऑफिस में आपका अपना चार्टर्ड फार्म है, बाबा की सेवा करो, आपको पूरे लौकिक एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपके साथ रहूं तो मुझे वो सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे साथ रह करके। तो उनको लगा कि ठीक है सेवा करना चाहिए, और हम सेवा करने लगे। मैं आपको वो अनुभव सुनाना चाहूंगा, 98 में स्पार्क की मीटिंग हुई
और उस समय ऐसा था, हम दो भाई थे, अरुण भाई और हम, वो पहले से समर्पित थे और मैं सेवाधारी रूप में आया था। तो मैंने देखा कि उनको सेवा करते हुए कि वो अकेले कैसे कर रहे हैं, तो मैंने एक जिम्मेदारी उठाया कि वो मुझे कहे या न कहे, जो मुझे दिख रहा है और मैं जो दी बेस्ट कर सकता हूं मैं करूंगा। और उसमें जैसा आप कोई चीज पहली बार करते हो, हम गांव से आए हैं, शहर से नहीं, या कोई उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था अलग 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 इंस्टीट्यूशन में या तो ऑर्गेनाइजेशन सेवा करने का, हम सीधा हेडक्वार्टर में आए हैं। तो जब मैंने एक संकल्प लिया, अगर कोई सेवा कर रहा हूं, अगर हमें हमसे गलती होती है, अगर हमें कोई शिक्षा दी जाती है, हम उसको दिल पर नहीं लेंगे, ये संकल्प लिया। अगर शिक्षा दिया गया तो हमें यह समझना है कि मुझे अभी आगे बढ़ने के लिए ये कहा जा रहा है। तो मैंने देखा, एक सेवा किया, गलती हुई, तुरंत यहां पे जो मधुबन में कोई बोलता है ना, बहुत जोरदार बोलता है, और अभी आपको उसमें क्या करना है, सुनना है। तो मैंने संकल्प लिया था, मैं यहां पे सीखने के लिए आया हूं। तो जब सीखने की बात आई तो फिर संकल्प कभी नहीं चला कि मुझे कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आप, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मार्जिन है, बस आप ढूंढो कि मेरे में क्या कमी है, उस कमी को मुझे भरना है। तो वो चीज जो संकल्प लिया वो हमें वहां से यहां तक पहुंचाया।
थैंक यू भाई जी। अभी नागेश भाई जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। भाई जी की एक विशेषता और भी है, उन्होंने जगदीश भाई साहब के साथ, रमेश भाई साहब के साथ और बड़ी दादी के साथ, तीनों के साथ बहुत समय बिताया है। भाई जी, हम जानना चाहेंगे क्या आपने ऐसा टर्निंग पॉइंट था, क्या ऐसा सीखा उनके संग से जो आपको पुरुषार्थ में और सेवाओं में इतना आगे ले गया?
जो प्रश्न देव पूजे उसका जवाब देने से पहले, अगर मेरा लौकिक का अगर जीवन देखते हैं तो कोई भी नहीं विश्वास कर सकता था ये ज्ञान में टिकेगा। और लौकिक अलौकिक परिवार में भी, जो अपना शहर में ज्ञान में चलते थे, उस समय 20-25 भाई बहने थे, उन्होंने इंतजार करते थे कब ज्ञान छोड़ के चला जाएगा, कब लौकिक दुनिया में जाके शादी करेगा, ये इंतजार करते थे। लेकिन इंतजार करते करते वो थक गए, और मेरे साथ जो कुमार थे उसमें कई लोग शादी करके चले गए और मैं रह गया, और रह के यहां तक पहुंच गया मैं। और ये सब, ये मेरा कुछ इसमें कुछ भाग नहीं लगता है, क्योंकि ड्रामा में कुछ होता है, फिक्स होता है, और कुछ जो मेरे प्रति जो सेंटर का बहनों ने जो विश्वास रखा था और दादियों ने जो विश्वास रखा था वो यहां तक आया, हमको इतना आगे बढ़ने में मदद मिले। और उनका विश्वास का तो मैं मूल्य लगा नहीं सकता हूं, और वो विश्वास ही उनका प्रेम का पात्र बनाया। और उन्हें जो भी काम देते, जो भी सेवा देते, उसको निष्ठा से ऑनेस्ट होकर के करते थे। और रमेश भाई का भी सेवा में ऑनेस्ट होकर के करते थे, जैसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था रमेश भाई को दादी का अंक समझ करके, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जैसे कि रमेश भाई इस संस्था में बहुत कुछ है, मैनेजिंग ट्रस्टी है और कई पीजे, उनका अगर बायोडाटा देखते तो एक पेज के ऊपर ज्यादा है, लेकिन इस संस्था में आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए एक ही था, वो दादी का एक अंक था। और इसी दृष्टि से जब दादी मुझे सौंपा और जब तक इनका अंतिम श्वास लिया, उस समय तक यही दृष्टिकोण से उनका मैंने सेवा किया। भले दुनिया में कुछ भी हो, आप परिवार के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए एक दादी का अंक था। और दादी शरीर छोड़ने के बाद भी मुझे ये खुशी था, दादी शरीर छोड़ दिया, तो कई लोगों को मैं यही बोलता था, दादी शरीर छोड़ा था कि उसका एक अंक तो मेरे पास है ही, यही बोलता था।
भाई साहब, इसी में हम और आपसे बात करना चाहेंगे। रमेश भाई साहब के लिए हमेशा मैं अपनी बात कहूं तो थोड़ा सा मुझे पर्सनली जाके लगता था, बात करनी है तो एक डर लगता था कि जाएं या नहीं जाएं, बगैर जाए भी काम चल जाए तो ऐसा कोई तरीका ढूंढ ले। और मुझे लगता है बहुत से हम भाई बहनों का ऐसा रहता है, तो वो उन स्ट्रिक्टनेस कहें या डिसिप्लिन कहें, आप इतने समय उनके साथ रहे, उसके पीछे उनकी क्या भावना थी? क्या उनकी नेचर ही थी कि वो स्ट्रिक्ट थे, या भावनाएं कुछ और थी?
देखो, शेर के सामने गया तो सबको डर होता ही है, ये स्वाभाविक। और पूछने का कोई जरूरत ही नहीं, शेर बड़े कुछ भी ना करें फिर भी उसके सामने जाने के लिए डर होता है। और उसी प्रकार मेरा भी था। और डर की बात एक है, डर उसको होता है जो गलती करता है, डर उसको होता है जो झूठ बोलता है, डर उसको होता है जो ठगी करता है। और मेरे अंदर ये कुछ भी नहीं थे, मैं अंदर से भी साफ थे, बाहर से भी साफ थे। और रमेश पे को यही थॉट से मैं बोलते थे, छाती उठा के बोलते थे, मुझे आपको दादी ने सेवा करने का निमित्त बनाया है। और कभी कभी रमेश भाई का मेरा इतना गहरा संबंध हो गया, घरेलू संबंध हो गया, उस समय रमेश भाई कभी कभी उनके साथ कहीं भी जाते थे, रमेश भाई उषा बहन दोनों के साथ जाते थे, तब मुझे पूछते थे, नागेश आपने हमारा सेवा कर रहे इसमें ये बताओ आपने मुझे चुना या मैं आपको चुना। मैंने रमेश को यही जवाब देता था, न मैंने आपको चुना न आपने मुझे चुना, हम दोनों को सेवा करने का एक दादी ने मौका दिया है, दादी ने मुझे आपका सेवा करने के लिए लगाया है और दादी का आज्ञा अनुसार मैंने आपका सेवा में उपस्थित हूं, यही कहता था। इसके लिए डरने की कोई बात ही नहीं थी, उनका मुंह तोड़ जवाब देता था, जो भी क्वेश्चन पूछे मुंह तोड़ जवाब देता था। कभी कभी पूछते थे, रिश्ता तो बहुत गहरा था क्योंकि उसका परिवार का भी मैंने सेवा किया, परिवार का सभी लोगों का सेवा किया, यहां तक सेवा की कि परसों भी मैंने बताया था सभी का अंतिम क्रिया भी किया। अंतिम क्रिया इतना ही नहीं, उनको चिता को आग भी देने का मैं ही काम किया हूं। और इसी अनुसार रमेश भाई को भी ऐसे ही किया था, इस प्रकार उनका सेवा में सहयोग करते थे।
भाई जी मुझे ध्यान आ रहा है, उस दिन हमारी बात थी हो रही थी तो भाई जी कुछ ऐसा भी शेयर कर रहे थे, अगर बाहर से भाई साहब का रूप स्ट्रिक्ट था तो कहीं ना कहीं भावना यज्ञ के लिए बहुत डेडिकेटेड थी कि भले मुझसे सब डरें या मुझे बुरा भी कहें लेकिन बाबा के कार्य में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब उसके बारे में बताएंगे।
एक्चुअली स्ट्रिक्ट बना स्ट्रिक्ट नहीं होते, स्ट्रिक्ट हम समझते हैं, ये हम समझते थे हमारा गलती है, जो स्ट्रिक्ट है उनका गलती नहीं। लेकिन कई लोग, कई आत्माओं का कई प्रकार का पार्ट होते हैं, कई सत्यता में परफेक्ट होते हैं, अगर उसको कोई भी झूठ बोला तो उसको ऑटोमेटिक गुस्सा आता ही है। कई सिस्टमेटिक सिर्फ कारोबार करना चाहते हैं, अगर उसमें थोड़ा सिस्टमेटिक में थोड़ा अगर कमी किया तो उनको थोड़ा गुस्सा आता है। इस प्रकार से मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका मतलब जो भी जिसका भी अगर संस्कार होते हैं, अगर उसमें ये हम समझने का कोशिश करें कि उन्होंने स्ट्रिक्ट है माना स्ट्रिक्ट ने हमको भी उनकी तरह बनाने का कोशिश करते हैं, अगर ये हम समझते तो हम भी उसी तरह बन सकते और उसका स्ट्रिक्ट हमको स्ट्रिक्ट नहीं लगता, वो स्ट्रिक्ट पे हमको आगे बढ़ाने का एक माइलस्टोन बन जाते हैं, ये मैंने सीखा हूं।
धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ बाप भी बच्चों को बहुत डांट देते हैं पर भावना उन्हें डांटने की नहीं होती या उनको हर्ट करने की नहीं होती, भावना उन्हीं का कल्याण हो उसमें ऐसा होती है। थैंक यू भाई जी। अभी हम संजय भाई जी से पूछेंगे, आप दादी के साथ काफी समय रहे, अभी आप बता रहे थे कि दादी जब मुरली सुनाती थी तो वो सीधे दिल तक पहुंचती थी, तो ऐसी आपने सुना मुरली उनसे कई बार, कोई ऐसी बात जो दिल को छू गई और फिर आपने वो किया पुरुषार्थ में, उससे सफलता मिली और ब्राह्मण जीवन का वो आधार बन गया हो, कुछ ऐसा अनुभव?
दादी जी तो मुरली सुनाती थी और हर एक पर उनका नजर होता था, अगर किसी की भी बुद्धि एक सेकंड इधर उधर होगी दादी जी फट से, जैसे मनोहर दादी जी पकड़ लेते थे ना, ऐसे दादी जी उसको पकड़ के प्रश्न पूछते थे, बताओ। तो इस तरह से दादी जी का अटेंशन, बाकी बाबा जो भी हमको होमवर्क देता है मुरली में, एक तो हम उसको तुरंत आके रिवाइज करते हैं और उस होमवर्क को उसी समय से हम करना शुरू करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि जिस समय बाप जो डायरेक्शन देता है उसको करने से उसका जो है प्रत्यक्ष फल उसकी शक्ति ज्यादा होती है। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि अगर ताजा फल खाओ तो उसके विटामिन प्रोटीन्स का जो है ज्यादा मिलेगा, और उसी को रखकर बासी करके खाओ तो उसके विटामिन प्रोटीन में फर्क हो जाएगा। तो इसलिए जिस समय बाबा जो डायरेक्शन देता है हम उसी घड़ी से करते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति ज्यादा होती है।
जी धन्यवाद भाई जी। अभी श्रीकांत भाई से हम बात करना चाहेंगे। भाई जी आप सब जानते होंगे भाई जी का मुरली मंथन बहुत श्रेष्ठ है, उनको मुरली की पॉइंट्स, मुरली के टाइटल और डेट के साथ सभी याद रहता है। भाई जी, कैसे डेवलप किया आपने, या हमेशा से आप इतने मेधावी छात्र लौकिक में भी रहे इसीलिए यहाँ पर आकर ऐसा रहा, या फिर कुछ विशेष पुरुषार्थ किया
आपने? लौकिक बात तो नहीं कह सकते हैं। जब हम 97 में मधुबन आए और 98 में जगदीश भाई जी ने एक ग्रुप बनाया थे मुरली पढ़ने का, आप सबको याद होगा जो पुराने हैं। भाई साहब अपने क्लासेस में कई बार कहा करते थे कि हम लोग तो बाबा को जानते हैं और बाबा को पहचानते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन कई आत्माएं ऐसे जो बाबा को नहीं जानते हैं, तो उन तक भी बाबा के महावाक्य पहुंचना चाहिए लेकिन उसकी विधि अलग हो। तो वो उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट निकाले थे जिस पर साकार मुरली की पॉइंट्स कलेक्शन करना था, और जगदीश भाई उस पर किताब लिखने वाले थे। तो उसमें जो ग्रुप बनी थी उसमें मैं सेवाधारी था, लेकिन उनका नियम था कि जो समर्पित हैं, कम से कम मधुबन में 5 वर्ष समर्पित हैं, उनको सिलेक्ट किया गया था। जब मुझे ये पता चला, उस समय ज्ञान सरोवर में करीब 3-4 ग्रुप बने थे, उसके एक ग्रुप का नाम था G8, ज्ञान सरोवर में वो पुरुषार्थी जो 8 में आने के लिए संकल्प रखते हैं या पुरुषार्थ करना चाहते हैं, और मैंने उस ग्रुप का भी ये पार्ट बना था। तो उनको ये काम दिया गया था मुरली पॉइंट कलेक्शन का, लेकिन जब जगदीश भाई के पास मिलने गए तो हमें वहां पर नहीं लिया गया कि हम सेवाधारी थे, और उनके ऑफिस में सेवा करने वाले महेश भाई, मैं उनसे पर्सनल मिलने के लिए गया, और जितने बार मिलने के लिए गया लेकिन वो बार बार मुझे मना करते थे। वो कहते थे कि भाई साहब की पूरा स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है, सिर्फ इसमें निवासी रहेंगे, सेवाधारी को अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा जो संकल्प था कि मुझे इस ग्रुप का हिस्सा बनना है और मुरली पढ़ना है, उसका कारण यही था। अचानक जगदीश भाई से मिलने का प्रोग्राम हुआ, करीब 20-25 ज्ञान सरोवर वाले थे, उसमें मैं भी था, और मुरली क्लास के बाद मिलने गए तो जगदीश भाई ने एक सवाल पूछा और उसके हम जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक आंसर दिया कि आप सबने ज्ञान लोटा मंथन किया है, ज्ञान सागर मंथन नहीं किया। तो उन्होंने वो जो कहा ज्ञान सागर मंथन क्या होता है, उसमें ये वो इंस्पिरेशन था कि स्टूडेंट लाइफ में आप अपने जीवन में जो सोचते हो, जो समझते हो, जो करते हो, उसके आधार मुरली होना चाहिए, और मुरली कैसे पढ़ना है। तो मुझे वही इंस्पिरेशन मिल गया कि पहले हम समझते थे पुरुषार्थ का मतलब जो भी बड़े भाई बहन हैं वो जो क्लास कराते हैं उसको सुनो और उसके आधार पर पुरुषार्थ करो। मुरली सिर्फ हम निमिनाथ बनके मुरली सुनने जाते थे कि ये हमारा पाठ है, माना विद्यार्थी है, ईश्वरीय विद्यार्थी है, मुरली सुनना है। उसके बाद मुरली अपनी जगह पर होता था, हम क्लास ढूंढते थे बड़े भाई बहनों की, दादियों की। लेकिन उनसे मिलने के बाद ये पूरा एहसास हुआ कि मुरली ईश्वरीय विद्यार्थी की सबसे फाउंडेशन है। तो वो जो संकल्प आया, लेकिन वो ग्रुप में बनना माना मुझे लेने के लिए कोई चांस नहीं था। जब मैं बार बार गया तो महेश भाई को लगा कि ऐसे भाई हमें चाहिए जिसको एक्चुअल रुचि है। निवासी को तो बुला गया लेकिन वो एक बार आए बस चले गए। और मुझे जब वहां पे लिया गया उस ग्रुप में, और 5 वर्ष की अव्यक्त साकार मुरली पूरा पढ़े हम पॉइंट निकालने के लिए, और उस मुरली को पढ़ने के बाद जो बाबा बात करते थे, कई बात आज मुरली में चेंज हुआ है क्योंकि समय अनुसार वो शब्दों को नहीं लाया जाता है, वो शब्द हमारे लाइफ को चेंज किया। बहुत सारे ऐसे शब्द थे, मुरली जो बार बार पढ़ा तो मुरली पढ़ने से ही जो एक रस आता है, क्योंकि हम कई बार अनुभव को बोलना चाहते हैं, हम उसको अपनी लैंग्वेज में बोल नहीं सकते, वो सिर्फ अनुभव तक रह जाता है। तो वो जो ग्रुप बना था, उस ग्रुप में बार बार मुरली पढ़ने के बाद फिर मुरली के प्रति अटेंशन आया, चाहे टाइटल को याद रखना, मुरली पॉइंट को याद रखना, वो एक अभ्यास रहा। आप 5 वर्ष मुरली पढ़ो, पूरा 3 साल की साधना उसमें रहा, तो वो हमें बहुत ज्यादा प्रेरित किया इस चीज को करने में।
धन्यवाद भाई जी। अभी मुझे लगता है हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। आपने डाले बाहर बॉक्स में, सभी ने डाले, उसमें से जो एक जैसे थे, जैसे सोल कॉन्शियसनेस पे जो क्वेश्चंस थे, हमने कोशिश किया उसको एक साथ बाइंड करें और उसका एक प्रश्न बना करके पूछें। तो 3-4 प्रश्न मैं पूछती हूँ भाइयों से।
और फिर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, जो ये थोड़ा प्रश्न यहाँ से हट के बात है, जो रमेश भाई के साथ आप सबको
सभी स्पार्कलर्स को पता होना चाहिए। मैं 3 मिनट बोलना चाहूंगा इसके ऊपर, और ये इसको सुनने के बाद आप सबकी एक रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा, आप खुद को उसी जगह पर लेके आएंगे। भाई साहब कैसे थे और जो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है मैं आपको सुनाना चाहूंगा। भाई साहब जितने बड़े थे, जैसे कि इतना बालक सो मालिक और मालिक सो बालक, मैं भाई साहब को हम दोनों की जो इंटरेक्शन वो मैं वो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया हूं भाई साहब के साथ। माना जो जिस जगह पर है उस जगह को उस व्यक्ति को सम्मान करना भाई साहब का जैसे कहते हैं एक माना लाइफ के हिस्सा था। तो ये ऐसा किस्सा है, हमारे ऑफिस में ज्ञान सरोवर स्पार्क ऑफिस में 2 कुर्सी टेबल के साथ एक अरुण भाई का एक हमारा था, और रमेश भाई उस समय हर 15 दिन में एक बार ऑफिस में आते थे, हमसे मिलते थे, हम बातचीत करते थे। तो एक बार मैं बैठा हुआ था, हम दोनों बैठे थे, और जैसे भाई साहब आए मैं उठ गया। मैं उठ के मैंने कहा भाई साहब यहां बैठिए, माना मेरी कुर्सी पर। तो भाई साहब बैठे तो मुझे 2 बात कहा। मैंने कहा कि बाबा ने आपको वो सीट दिया है, रमेश भाई को नहीं दिया है, क्योंकि आप वो सेवा के निमित्त इसलिए दिया है, अभी उस जगह पे आपको सेवा करना है। ये जगह मेरे लिए, मैं आप सबसे मिलने के लिए आया हूं, भले आप सबकी हम मिलके सेवा करते, हम इंचार्ज हैं, आप सेवाधारी मत समझो, आप भी मेरे जैसे हो। अरुण भाई की जगह यहाँ, आपकी जगह यहाँ, अरे मेरा जगह यहाँ, जब मैं यहाँ पे आऊंगा, जब मेरे पास आप आओगे फिर आप क्या, आप मेरे सीट पर नहीं बैठोगे, आपकी सीट अलग होगा, हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कहा था, आप हमेशा याद रखना इस बात को, जो भी हम सेवा करते हैं, भाई साहब कहते थे जैसे मैं हूं वैसे हर एक स्पार्कलर है, और बाबा निमित्त बनाए हैं ज्ञान योग की गहराई में जाकर के पूरे ब्राह्मण आत्माओं के लिए। मुरली सुना ना कल जो रिफ्लेक्शन हो रहा था कि मनन चिंतन करना और मनन चिंतन करके मक्खन निकालना, और वो मक्खन सबके लिए बल भरेगा जो बाबा ने कहा। तो वो बात उन्होंने रिपीट किया, जो छोटा सा ग्रुप था तो हम सामने भले 6-7 थे, लेकिन बाबा सबको एड्रेस कर रहा था जो भविष्य में स्पार्क में आने वाले थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है वो आपकी है, और मेरा ये सोच है कि हम हमेशा 2 कदम आगे सोचे, और 2 कदम का मतलब उसमें एक बाहर वाली बात है, जैसे बाहर क्या रिसर्च हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में उसको सोचो, और उसकी जरूरत यज्ञ में क्या है, आप यज्ञ सेवा में कितना मददगार बन सकते हो एक डिपार्टमेंट के नाते। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि वो चीजें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया है। अभी आप सबका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई साहब ने कहा कि भले भाई साहब अव्यक्त हुए हैं लेकिन वो हमारे बीच में है, तो उन्होंने हमें 4 काम दिया है करने के लिए। 1 काम है स्पार्क को फ्लेम बनाना। तो स्पार्क को फ्लेम बनाने की बात करते तो वो एक बात कहते थे कि जैसे पहले 6 लोगों का टीम, उसके 50, फिर 150, आज हम हर वर्ष मिनिमम 750 भाई बहन आ रहे हैं। उन्होंने संकल्प दिया था कि ऐसा समय आए जो स्पार्क मीटिंग डायमंड हॉल में हो। जो भी आपको पता होगा जो मीटिंग अटेंड किए हैं, तो उनका यह भाव था स्पार्क को फ्लेम बनाना। तो ये तब होगा, तो भाई साहब ने कहा था ईच वन टीच वन, रवि यहां ईच वन टीच वन करेंगे 1400 होगा। वो कौन से हल में आएंगे हम, लेकिन डायमंड हल में कितने लोग बैठेंगे, 25,000। तो इसके लिए कितना होगा ईच वन टीच, कितना होगा तभी आप अपना हिसाब कर लीजिए। एक संकल्प ये है। दूसरा संकल्प भाई साहब ने दिया था कि स्पार्क को अम्ब्रेला बनना है, मतलब जो भी सेवाएं हो रही है, चाहे विंग की सेवाएं या यज्ञ में जो सेवाएं हो रही है, तो ये हमारा नैतिक दायित्व है। हम यहां पे जो बैठे हैं भाई बहने, तो वो एक संकल्प ले, हम क्या ऐसे सेवा करके साधन बनाए स्पार्क को दे, तो वो सेवा साधन हर एक विंग के लिए छतरी की तरह काम करे, ये संकल्प सब लेना। दूसरा भाई साहब कहते थे कि हम इस ईश्वर विश्वविद्यालय को एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने, आपको याद होगा 2017 की 2015 की मीटिंग में कहा था
कि जो बाबा के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, कम से कम मास्टर डिग्री किया है, वो लोग संकल्प ले कि बाबा की ज्ञान की सब्जेक्ट में पीएचडी करें किसी यूनिवर्सिटी से मिल करके। अगर हमारे पास ऐसे कम से कम 200 से 300 बाबा के ज्ञान की सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीएचडी कर ले तो हमारे पास वो क्वालिटी आ जाएगा, ये वो क्वालिफिकेशन आ जाएंगे कि हम यूजीसी को एप्लीकेशन दे या अप्लाई करें कि ब्रह्मा कुमारी जी को ऑफिशियली आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय रिकॉग्नाइज किया जाए। डॉक्टर दास जो बैठे हैं उनको इसकी नॉलेज है, तो उनका एक कहना था हम इस पर भी संकल्प करें, इसको कैसे करें। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है सबको? जो माताएं बैठे हैं, माता ये ना समझे कि हम रिसर्चर नहीं है, आप सबसे बड़े रिसर्चर है, क्योंकि हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन कौन बने हैं, तो सबसे बड़े रिसर्चर आप ही हो। और उन्होंने एक बात कहा था जो उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सीएसआर के बारे में, बार बार कहते थे कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है उसको हम कुछ उनकी वो जो बातें गवर्नमेंट की जो बात है हम उसको कैसे सेवा में यूज करें। तो उन्होंने बार बार स्पार्क में कहा है बात, उतनी बात उन्होंने कभी ब्रह्मा कुमारीज की एनुअल मीटिंग में नहीं कहा या कोई अलग मीटिंग में नहीं कहा, कंटिन्यूअसली 3 साल से वो बात को कहा था। अभी हमारी ये बन जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी की वो जो बात भाई साहब ने कहा था उसको हम कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि इस मीटिंग में उसकी चर्चा की बात नहीं रख पाए, इसलिए हम आपके सामने ये थॉट दिया है आप कैसे कर सकते हो। उसकी एक तरीका है कि ईमेल कम्युनिकेशन है, आप ईमेल के माध्यम से इन बात पर जो भी प्रैक्टिकल सुझाव हो वो सुझाव भी दे और उसको कैसे कर उसके एक्शन प्लान भी दे और उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वो आप जरूर लिखें हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब चीज हम कर सकेंगे और हम आगे जो भाई साहब की इच्छा था वो हम आगे ले सकेंगे, उन्होंने कई बार ये संकल्प रखा है। और लास्ट जब 2016 में ब्रह्मा कुमारीज की सर्विस मीटिंग हुई थी उसमें स्पार्क विंग में मिलने के लिए आए थे, उनकी लास्ट वार्निंग था कि स्पार्क का काम है राजयोग मेडिटेशन को स्टैंडर्डाइज करें। जब स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं उसमें साइंटिफिक एप्लीकेशन की बात आता है। उन्होंने ये कहा था कि कई बार हम एक स्थिति की अनुभूति की बात करते हैं तो कमेंट्री करते हैं या तो अभ्यास की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार की बात आती है, तो स्पार्क उस पर सोचे कि कैसे राजयोग मेडिटेशन को स्टैंडर्डाइज करें। ये 5 बात पर हमें काम करना है, तो इस पर आपके जो भी सुझाव हो और आप अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि भाई साहब दिल की बात हम सबके सामने रखा है और ये बात अभी तक उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए आप सबके सहयोग से, और आप सबकी सहयोग सिर्फ सुझाव की नहीं प्रैक्टिकल आप कर क्या कर सकेंगे उसकी भी सहयोग हमें चाहिए, ताकि हम भाई साहब की ये विजन कहो या उनके संकल्प को उसको हम प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाएं।
धन्यवाद भाई जी। हम भाई जी को एश्योर करते हैं जो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया भाई साहब का विजन, हम अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे, 20 नाखूनों का जोर लगाकर भी है ना भाई साहब के सपनों को साकार करेंगे। एक हाथ ऊपर उठाकर हम एश्योर करें भाई जी को। थैंक यू। भाई साहब कुछ प्रश्न आए हैं जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि दादी जी का और रमेश भाई साहब का डेली रूटीन कैसा रहता था?
इसमें रूटीन बोलने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन दादी का रमेश भाई का ऐसे था कि जैसे कि माँ बेटे का जो संबंध होता है इसी प्रकार संबंध होता था। दादी भी रमेश भाई को बहुत मानते थे और रमेश भाई भी दादी को बाबा से भी ज्यादा मानते थे।
भाई साहब उनकी दिनचर्या कैसी थी?
रमेश
भाई जी की भी और दादी जी की
दिनचर्या तो बाबा जो श्रीमत दिया है सबके लिए उस श्रीमत को अगर पालन करने में अगर देखते थे हमको बहुत कुछ उनसे सीखना पड़ता है, और बाबा ने जो एक एक आज्ञा का देते हैं उस आज्ञा का जो पालन करना इन लोगों का एक नेचुरल नेचर बन गए थे, नेचर बन गया था इनका। इस प्रकार बाबा जो भी कहे तो उसको 100% फॉलो करते थे। ऐसे बिजी शेड्यूल में कैसे योग के लिए टाइम निकाल पाते, ये क्वेश्चन पूछा। लेकिन मैंने इसका जवाब ये देना चाहता हूँ, उन्होंने योग में रहते थे और काम के लिए टाइम निकालता था, कामकाज करने के लिए टाइम निकालता था, ये मैंने अनुभव किया।
भाई जी, क्वेश्चन फिर मिलता जुलता है शिल्पा दीदी के क्वेश्चन से कि कैसे अथक रहे और लाइट रहते थे, वो सेवाओं में पूरा दिन रहते थे, पर कैसे अपने आप को हल्का रख पाते थे?
लाइट रहना, भारी रहना, ये हमारा वैयक्तिक ऊपर है। अगर उसको बोझ अगर हमारा सिर का ऊपर डाल दिया तो हम भारी रहते हैं। अगर बोझ अगर भगवान का ऊपर डाल दिया, हम निमित्त बनकर ट्रस्टी बनकर हम करते हैं, कितना भी बोझ हो तो वो बोझ हम हल्का रहते हैं। ये हमारा ऊपर निर्भर है। अभी कुछ जवाबदारी तो हम उसको सीरियसली लेते हैं तो भारी बन जाते हैं, उस सेवा को ठीक कर नहीं पाते। अगर बाबा का सेवा करके हम निमित्त बन करके करते हैं तो कितना भी मुश्किल काम भी सहज होता है। हमको भी विश्वास नहीं होता मैंने ये काम करने का लायक हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये भी हमको विचित्र, ये काम मैंने किया बोले तो हमको एक आश्चर्य लगता, मैं कैसे किया इस काम को, इतना हल्का होता है।
धन्यवाद भाई जी। अगला प्रश्न मैं संजय भाई जी से पूछना चाहूंगी। दादी को और बड़ों को जब किसी को कुछ सिखाना होता था तो कैसे वो सिखाते थे, भले अपने किसी अनुभव से बताइए।
दादी का कहना तो सभी मान लेते थे बहुत प्यार से। दादी दादी थी इसलिए दादी ने कहा और किया। हमने ये भी देखा कि जो बड़ी दादियां थी या जो इन्हों का संगठन था, आज दिन तक कभी आपस में अनबन नहीं देखा या कभी जोर से एक ने कहा दूसरे ने माना, ये था इन्हों का पाठ पक्का था। बावन इन्हों के नस में कूट कूट कर ये सब नेचुरल संस्कार डाला है, इसलिए दादी जी जो कहती थी सब सहज रीति से मान लेते थे। हम तो ऐसा अनुभव किया
भाई जी, कई बार छोटे जो उनसे छोटे भाई बहन उनके साथ रह रहे हैं उनसे कोई गलती हुई, अभी दादी को बताना है कि ये ऐसा नहीं करे, तो किस रीति से दादी बताती थी?
अब हम तो क्या है, हम तो सारा दिन भोजन के इसमें बिजी रहते हैं। हमको दादी ने एवरेडी का पाठ पक्का कराया। दादी जी का अगर भोजन ये नाश्ता शांतिवन में है, भोजन ज्ञानसवर में है, डिनर जो है मधुबन में है, तो हमको तो एवरेडी रहना पड़ता था, हर चीज को बनाना करना फिर समेटना। तो इस ढंग से हम तो पर्दे के अंदर भोजन बनाते थे, बाहर दादी के अंग संख्या है दादी। दादी जी हमेशा हमसे पूछती थी कि जो भी बनाते हो बाबा को जरूर भोग लगाना, एक तो प्यार से बनाना, फिर बाबा को प्यार से ऑफर करना, फिर हम सब कुछ कायदे मुजब करते थे और फिर दादी के पास भोजन जाते थे। तो बाबा कहते हैं अगर तुम 75% मेरी याद में रह के भोजन बनाते हो तो हम उसकी वासना लेते हैं, और जो हम ब्रह्मा भोजन एक एक गिट्टी बाबा की याद में रह के जब खाएंगे तब हम पासवी तो अनुभव बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते। नहीं, वो दादी निकाल देती है दूसरे के थाल में। ऐसा कुछ नहीं है।
थैंक यू भाई जी। अगला क्वेश्चन श्रीकांत भाई जी आपसे पूछेंगे। बहन पूछती है, बाप दादा द्वारा दिए गए वरदानों को अपने ऊपर कैसे लागू करें? बाबा ने वरदान दिया, कैसे अब वो मेरे अनुभव में आए?
इसके अगर आप वरदान की अनुभूति की बात करेंगे तो भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल लीजिए। जब भी किसी को वरदान मिलता था कहा जाता था वरदान को स्मृति में रखो, पहले आपके वरदान स्मृति में रहना चाहिए और उसके बाद उसके स्मरण कि दिन भर में वो रिपीट करो। तो जब स्मृति और स्मरण दोनों साथ में होगा तो आप तुरंत वरदान काम में आएगा। अगर वरदान याद ना हो तो कैसे काम में आएगा? तो हम भी जब बाबा की कोई ब्लेसिंग्स मिलता है, मुझे अभी याद है जब मनसा सेवा की जो किताब रिलीज हो रही थी तो तभी मैं सेवाधारी था। उस समय अनाउंसमेंट हुआ जो भी सेवा मना उस किताब के साथ हम भी थे, लेकिन मेरा नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ था स्टेज पर जाने के लिए। तो उषा बहन ने शशि बहन को बोल के नाम अनाउंसमेंट करवाया कि श्रीकांत भाई को बुलाओ, सेवाधारी भाई। जब मैं सामने गया तो बाबा टोली देते हैं ना, अभी बाप दादा, तो एक बार टोली लिया, फिर उषा बहन ने कहा कि नहीं बाबा ये भाई को दो बार टोली दो, ये बहुत सेवा करता है। तो मैं वो दृश्य देखता हूँ जब भी हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, ये एक टेक्निक ही आप कर सकते हैं। बाबा ने मुझे ऐसे बुलाया और फिर दोबारा टोली दिया, तो मैंने उस दृश्य को जब भी मुरली में वरदान सुनते हैं वो बाबा का महावाक्य वरदान वाला और बाबा अव्यक्त बाप दादा से जो नैन मुलाकात हुआ तो उसमें जोड़ देता हूँ, तो तुरंत मुझे वो स्मृति में वरदान की शब्द रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे अव्यक्त मिलन सबने मनाया होगा बाबा से, मुरली सुनते हैं ना सभी, आप
बाबा कहते हैं ना, जो भी सभा में बैठे हैं सबको बाबा दृष्टि देते हैं। कहाँ देखते हैं बाबा? क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। तो जब आत्मा को देखते हैं तो बाबा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो जब भी आप मुरली में वरदान सुनो तो उस समय अव्यक्त मिलन की दृष्टि को याद रखो, विजन में लेके आओ, फिर वरदान सुनो, देखो कैसे वो स्मृति वरदान शुरू बन जाता है।
धन्यवाद भाई जी। अगला प्रश्न नगेश भाई जी आपके लिए है। पूछा है, मेरे पति ने 2 साल पहले शरीर छोड़ा है, उन पर 2 बच्चों की जिम्मेवारी है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलती है, लेकिन कारोबार उनका व्यवसाय ऐसा है जिसमें अधिकारियों को देना पड़ता है, माना गलत रीति से भी देना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता, परंतु इस रीति से धन कमाने पर मन अंदर से खाता है कि मुझसे कोई विकर्म तो नहीं हो रहा, शुद्ध धन न होने के कारण बोझा तो नहीं चढ़ेगा, कृपया मार्गदर्शन।
इसमें कारोबार में रिश्वत देना पड़ता है, कुछ एक दुनिया में होता है कि कुछ व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ नहीं होते है। कभी कभी रमेश भाई ने कहा करते थे, उन्होंने एक रमेश भाई एक उदाहरण दिया था, एक छोटे बच्ची ने अपने बाप को प्रश्न पूछते हैं, उस समय बादल बिजली गरजती है, बादल गरजते है बिजली चमकती है, तो उस बाप ने बेटी ने उसके बाप से प्रश्न पूछा, पिताजी क्या होता है ऊपर? फिर कि पिताजी ने उसको क्या जवाब दे सकते है? पिताजी ने बोला कि बेटी वो इंद्र का शादी है, इसके लिए वहां पटाखे फोड़ रहे हैं, और उसका चमक होता है, उसका आवाज आती है। तो रमेश में एक जगह उदाहरण दिया था, मेरे क्लास में उदाहरण दिया था, मैंने आपको बता रहा हूं, कहीं जोधपुर में गए थे, उधर उदाहरण दिया था। तब वो पिताजी उस बेटी को झूठ बोला क्या सही बोला? अब क्या समझते हैं? झूठ बोला। अगर सही उसको बोलते थे तो बेटी का समझने का क्षमता होती थी? नहीं होती थी। इसके लिए बेटी को संतुष्ट करना था, इसके लिए वो उन्होंने जवाब दिया। फिर वो बेटी ने अपना फ्रेंड के सर्कल में गई, और उस समय वैसे बिजली गरज रही थी, आवाज आ रही थी, चमक रही थी, हो रही थी। फिर उन्होंने अपना फ्रेंड्स को बोला कि उधर इंद्र देवता का शादी हो रही है। फिर वो बेटी ने अपने फ्रेंड्स को सही सत्य बोला क्या झूठ बोला? बाद में बड़े होने के बाद समझने का कोशिश करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है। और रमेश भाई का जो रिश्वत की बात आती है, आज तक रमेश भाई के साथ 30 साल तो मैं रहा और कारोबार में भी देखा, और रमेश भाई इतना स्ट्रिक्ट क्यों होते थे इसका भी एक जवाब मैं देता था, क्योंकि अपने आपस में परिवार की बात होती है, परिवार के बात में जैसे बहनों का कुछ कनेक्शन होते हैं रमेश भाई के साथ, और बहनों का कुछ व्यवहार का नॉलेज नहीं होते, और ऐसे कितना कायदा कानून होते भी कुछ भावना में आकर के अपने काम कर लेते थे, लेकिन भावना में आकर के काम करने का जो नुकसान होता है वो बहुत होता है, क्योंकि कायदा कानून का पता नहीं होते, और उसी प्रकार उसको समझाने की कोशिश करते थे। और बहनों ने अगर कुछ गलती होते तो बहनों ने सिर्फ सॉरी बोलता थे, ऐसे बोलते ना भाई साहब सॉरी हो गया, गलती हो गया। अगर ज्यादा डांटा तो फिर दादी को एक लेटर लिख के देते, दादी मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे से गलती हो गया, मेरा क्षमा कर देना। लेकिन ये आपस में एक रिलेशन होती है, प्रेम प्यार का संबंध होते है, इसमें सॉरी बोलते हैं। अगर यही अगर गलती रमेश भाई ने जब इनकम टैक्स ऑफिस में जाते थे कमिश्नर के पास, वहां सॉरी का भाषा नहीं चलता है, उधर गलती से भी सॉरी का भाषा नहीं चलता है। अगर ये गलती किया तो इसका इतना पेनल्टी है, लाखों रुपए का पेनल्टी भरना पड़ता था, इस हिसाब से उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता था। और आज तक मैंने देखो बहनों ने कितना गलती किया, तो बहनों को सॉरी किया तो उसको तो समझाना ही पड़ता है, और उस गलती को छुपा के गवर्नमेंट को कुछ दिखाना ही पड़ता है। और ऐसे ही करीबन 95-96 में ऐसे एक समस्या आई यज्ञ में, तो उस समय जो जोधपुर में कमिश्नर था, इनकम टैक्स कमिश्नर, उन्होंने आर्य समाजी का था, और ऐसे आपको पता है कि आर्य समाजी ब्रह्मा कुमार से एकदम एग्नेस्ट है, और आज थोड़ा कुछ फेवर में आ गए है, लेकिन उस समय करीबन 95 का विषय बता रहा, 95 का बात बता रहा, उस समय एग्नेस्ट था। एग्नेस्ट होने के कारण कुछ ना कुछ ब्रह्मा कुमार का गलती पकड़ना है, ऐसे करके गलती उन्होंने पकड़ा, गलती पकड़ के उसे करोड़ों रुपए का पेनल्टी डाला, और उस पेनल्टी को भरना है, उन्होंने नोटिस भी निकाला, सब कुछ किया, ऐसे मना संस्था का आपको इस प्रकार प्रूफ नहीं, इस प्रकार का संस्था है, इस प्रकार का आपको पेनल्टी डालते हैं, अगर आप प्रूफ करके दे दो तो हम पेनल्टी छोड़ देते हैं करोड़ों रुपए का। अगर उस समय मैंने देखता हूं अगर पूरा हमारे यज्ञ का सब प्रॉपर्टी भेजा तब उसका पेनल्टी भर नहीं सकते थे, इस प्रकार का संदर्भ आ गए थे। और उस समय कमिश्नर के पास जाना आना होता तो उदयपुर जाते थे, जोधपुर जाते थे, जयपुर जाते थे, दिल्ली जाते थे, अहमदाबाद जाते थे, सब जगह जाते थे, लेकिन कमिश्नर एक हाथ पकड़ के बैठा था कि पहला पैसा भरो बाद में बात करो, जो पेनल्टी पहला पेनल्टी भरो बाद में बात करो। फिर रमेश भाई बोला कि नहीं, पहला जो केस जब तक केस क्लियर नहीं होते तब तक हम पैसा नहीं भरेंगे। बाद में उन्होंने फुल पैसे की जगह 50% तो पहला कम से कम पैसा भरो, फिर रमेश भाई वो भी नहीं भरा। एटलीस्ट लास्ट उन्होंने करीबन 3-3.5 साल चला एक केस, और लास्ट में उन्होंने बताया कि कम से कम 25% तो पैसा भरो, पैसा भरने के बगैर मैं आपसे बात नहीं करता। मैंने बोला पैसा नहीं भरूंगा, मैंने रिश्वत तो हम देते नहीं, किसी को रिश्वत तो देते नहीं थे रमेश भाई। एक दुनिया में भी एक होता है कि एक रिश्वत होता है, एक गिफ्ट होता है, और जो काम करने से जो पहला देते हैं उसको रिश्वत कहते हैं, आप काम करने के बाद जो खुशी से देते उसको गिफ्ट कहते हैं, क्योंकि इसका दोनों का हम संबंध नहीं समझ पाते। लेकिन हम ईश्वरीय सौगात देते हैं, काम करने के बाद खुशी होते, खुशी के बाद हम गिफ्ट देते ही है, लेकिन हम गिफ्ट के रूप में देते हैं। और हम भी ऑफिसर्स को गिफ्ट देते ही है, ऐसे नहीं कि बिना दिए काम नहीं चलता, लेकिन दुनिया में क्या होता है पहला देते उस रिश्वत के नाम से जाना जाता है, हम गिफ्ट देते वो रिश्वत दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कुछ तो देते ही है। और इस प्रकार से हमारा कारोबार चलती थी। उस समय कमिश्नर कितना भाई कोशिश किया, करीबन 3 साल सतत मेहनत किया, 3 साल उन्होंने कितना भी कोशिश करने का हमारे हमको अंदर भी नहीं साड़ने देते थे। ऐसे समय में रमेश भाई एक पैसे भी उनके पास जमा नहीं किया, बाद में जमा नहीं करते हुए उन्होंने केस को जीत गया। जीतने के बाद वो केस तो अपने तरफ हो गया, अपने तरफ होने के बाद उसको पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर बाय चांस इनकम टैक्स कमिश्नर का जो ऑर्डर करता था, जो उन्होंने धमकी हमको देता था संस्था को, नहीं तो संस्था बंद करेंगे, वो करेंगे, कई कुछ धमकी देता था, अगर धमकी को अगर डर के अगर कुछ भी अगर पैसा देते थे या उसको रिश्वत भी देते थे तो भी बाबा का यज्ञ का ये होता था। इसका पीछे मतलब यही है कि जो कारोबार में जो बाबा के प्रति जो विश्वास है, बाबा के प्रति विश्वास, बाबा के प्रति स्नेह, और बाबा का कार्य करके हम निमित्त पर के जो कराते हैं। परीक्षा तो बहुत प्रकार से आती है, सबको आती है, हरेक को अपना अपना कारोबार में अपना अपने प्रकार के जितना जो क्षमता होते है उस क्षमता के अनुसार परिस्थिति आते है, और वो परिस्थिति उनके लिए बहुत भारी होती है। अगर छोटे को छोटा परिस्थिति आते है तो छोटे परिस्थिति उनको भारी होती है, लेकिन उसको किस प्रकार से बाबा की याद में बाबा के रिस्पॉन्सिबल मान करके एक ट्रस्टी बनकर करते हैं, परिस्थिति परिस्थिति नहीं रहते, इस प्रकार से उन्होंने जीत पाए। इसमें रिश्वत बिल्कुल नहीं दिया, और आज तक मैंने 30 साल में कभी भी देखा है कि रिश्वत किसी को भी नहीं दिया। ऐसे कई कारोबार में मुझे भी भाग लेने का पड़ा है, और मेरे पास भी कई कमिश्नर चैरिटी कमिश्नर को सेवा करने का सौभाग्य मिलता था, और कभी भी उनको ये नहीं। हाँ, काम करने के बाद उनको लाखों रुपए खर्चा करते थे, घुमाते थे, फिराते थे, गिफ्ट देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन काम से पहले नहीं, रिश्वत के नाम से नहीं, गिफ्ट के नाम से देते थे
जी। जो कहने का भाव हम समझे वो यही कि बाबा के बच्चे बनकर हमको ये सब नहीं करना। श्रीकांत भाई जी, आपसे पूछना चाहेंगे, फिर वो बहन ऐसी क्या वो धारणाएं हो, ऐसी क्या मन की स्थिति हो जिससे वो इतनी दृढ़ रह पाए अपने निश्चय पर?
हम तो इतना कहेंगे, अगर बहन के मन में ये आ रहा है कि जो कर रही है उनको महसूस हो रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, मतलब उनके मन में एक ताकत है, अगर वो थोड़ा मतलब जो मन ये रियलाइज कर पा रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं तो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अलग होना चाहिए, तो थोड़ा अपने आप से बात करे, और जो जिम्मेदारियां जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो बिजनेस को बाबा को सौंपे और बाबा से बात करे कि अगर ये काम हमें नहीं करना है, हमें ठीक नहीं लग रहा है, और क्या करे जिसमें बाबा का श्रीमत का उल्लंघन ना हो और हमारी जो समस्या वो समाधान हो जाए। तो मैं तो इतना कहूंगा, अगर मन गलती को पहचान पा रहा है तो मन में किसी ना किसी कोने में वो ताकत है उस गलती को ठीक करने के लिए। बस इतना है, अपने को थोड़ा समय दे और बात करे अपने आप से, और बाबा को वो समस्या सौंपे, फिर समाधान मिल जाएगा।
थैंक यू भाई जी। अगला प्रश्न संजय भाई जी आपके लिए है। लिखा है, जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि सब और अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे समय में क्या करें, किस ओर जाएं, तो ऐसी परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें?
इसके लिए तो बस एक बल एक भरोसा, बाबा सामने हैं और क्या जी। बाबा को हम आगे रखते हैं और सारा खेल निश्चय पर है। अगर निश्चय हमको है कि बाबा है, बाबा का कार्य है, तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा समझते हैं।
जी बिल्कुल ठीक भाई जी, लेकिन जब एक परिस्थिति में फंसे हैं हम, जब बहुत दुविधा की सिचुएशन है, परिस्थिति ऐसी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मार्ग सही है, तो ऐसे में क्या हम स्वमान धारण करें, क्या ऐसे अपने मन में दृढ़ता रखें, क्या ऐसी क्लैरिटी की पॉइंट रखें कि प्रकाश हो और अंधेरा जाए?
तो बाबा के ऊपर छोड़ते हैं, बाबा कोई न कोई रास्ता कल्याण का बता ही देता है, कुछ न कुछ करवा ही देता है, इसलिए सफलता अपना जन्मसिद्ध अधिकार है।
जी धन्यवाद भाई जी। बाबा पर निश्चय, एक बल एक भरोसा, किसी भी परिस्थिति से हमें बाहर निकाल सकता है। एक माइक किधर ऑडियंस में हम दे सकते हैं? नहीं भाई जी, भाई जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज।
अभी श्रीकांत भाई ने इस पार्क को, जो रमेश भाई का एक सपना, और बाबा ने अपने मुरली में भी शोध को आध्यात्म का आधार बनाने की जो चर्चा की है, उस संदर्भ में मैं दो बात करना चाहूंगा। मैं अपने को बड़ा फॉर्चुनेट इसलिए मान रहा हूं कि जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 17-18 दो दिन एक इंटरनेशनल सेमिनार है, जिस सेमिनार में एक कीनोट एड्रेस मुझे भी देना है, और जयंती बहन आई हैं, आज सुबह मुरली में मैंने उनको देखा, हैप्पीनेस पर उनका भी एक कीनोट एड्रेस है। टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट। तो ये जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारे यूथ पावर से जुड़ी हुई है, और उसके तीन एस्पेक्ट है, हार्नेसिंग यूथ फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड हैप्पीनेस। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर जो हमारे श्रीकांत भाई का हमको डॉक्टर दास करके संबोधित किया और इस तरफ इशारा जो है, तो आज तक मैंने अपने जीवन में शोध को ही जीवन का आधार बनाया, और अभी तक मैं समझता हूं कि करीब 50 ऐसे विद्यार्थी होंगे, शोधार्थी, जिसमें जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर हैं प्रभात कुमार पंकज, ही इज ऑल्सो माई PhD स्टूडेंट। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा बाबा का ब्लेसिंग लेते हुए कि जो UGC के साथ जोड़ने का जो एक संकल्प हम कहेंगे हम सब लोगों ने लिया है स्पार्क यूनिट के, इस शोध के कार्य के माध्यम से जो बाबा के विचार हैं, उसमें शोधार्थी किस तरह से योगदान करके कॉम्पिटेटिव स्टडी करते हैं, इसके लिए मैं श्रीकांत भाई को एश्योर करना चाहता हूं कि जिस तरह की भी मदद, जिस तरह के भी बाबा का डायरेक्शन हमें मिलेगा, हम उस दिशा में कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद भाई जी। आप में से कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे? अभी 5 मिनट हैं हमारे पास, इनफैक्ट 4 मिनट हैं। कोई भी? जी
भाई जी, आपने बताया कि शुरुआत जो स्पार्क की हो गई अरुण भाई और आप दोनों ने शुरुआत की थी। अरुण भाई प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण वहां नहीं थे और अकेले को आपको बागडोर संभालनी थी। उस समय आपकी मन की अवस्था, तन की अवस्था कैसी थी?
...2008 में 18 जनवरी मिलन के बाद 20 तारीख को उषा बहन और रमेश भाई मुझे अपने पास बुलाया था, क्योंकि तब अरुण भाई जी का तबीयत काफी बिगड़ रहा था, सेवाएं काफी डिस्टर्ब हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको संभालना है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं संभालना है, आप हमारे साथ हो, बस मुझे सेवा करना है। तो वो चीज में आप ये मुझे जो चीज हल्का किया, मैं बीच में बैठा था, दोनों एक तरफ मेरे दाहिने तरफ उषा बहन बैठी थी और बाएं तरफ रमेश भाई जी, और दोनों ने मेरे यहाँ पे कंधे में हाथ रखा। तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मेरा नहीं है, वो दोनों की है, बस मुझे सेवा करना है, बस वही मुझे रिलैक्स किया। और चैलेंजेस की बात कुछ नहीं था, कि आप लोग सभी आते हैं, हमारे स्पार्क के जो भाई बहन आते हैं, कभी कभी रमेश भाई कहते थे ना, ये सब इंटेलेक्चुअल्स हैं और साथ में समझदार भी हैं, है ना, बुद्धिमान भी हैं, समझदार। तो समझदार होते तो तकलीफ थोड़ी होती है, हा? अगर कोई गलती हुआ तो आप उसको अपना गलती समझ के आगे ले लेते हैं, तो कोई तकलीफ है ही नहीं, ऐसा है ना जी। तो इसलिए रमेश भाई ने कहा कि कोई डिपार्टमेंट नहीं है, रमेश भाई का ये था कि ये परिवार है, स्पार्क परिवार है, जहां परिवार है तो वहां पर जिम्मेदारी नहीं होती है, परिवार में हर एक से मिलकर के चलते हैं। अगर मैं नहीं कर पाया तो आपको दिखेगा नहीं हो पा रहे, आप आगे आके करेंगे, ये विश्वास है, तो फिर कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है, सब मिलके आगे ले जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा नहीं, तबीयत तो बाबा संभाल के रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बड़ों के आशीर्वाद है, बहनों के सहयोग, आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी साथ में हैं।
भाई जी, इसी कड़ी में एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे। अभी रमेश भाई साहब के शरीर छोड़ने के बाद आपके लिए वो बैकबोन थे, आपने कैसे संभाला अपने आप को, क्या वो धारणाएं थी जो आप इतना मजबूती से आज भी खड़े हैं और दूसरों को भी संभाल रहे हैं?
जब रमेश भाई जी की तबीयत काफी जब उनकी किडनी की ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट नहीं कहेंगे, स्टाम्प सेल हुआ था उनका, तो स्टाम्प सेल में काफी प्रॉब्लम होता है, जो जब हुआ मुझे पता था कि उनकी जो स्टाम्प सेल हुआ वो सक्सेस हुआ है, मुझे इसे पता चला था, तो मैं निश्चिंत है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अचानक जब स्टाम्प सेल हो गया, वो आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, हम चाहते हैं कि स्पार्क की जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपने बनाया है, जैसे चेयरपर्सन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर, कोर ग्रुप और जोन सबजन कोऑर्डिनेटर, इनके अलावा हम कुछ अलग एक लेवल क्रिएट करें जो स्पार्क की कारोबार में मदद करे। उन्होंने मुझे कहा था, नहीं, आपको दादी ने अंबिका बहन दिया है और जोन सबजन कोऑर्डिनेटर बहने दिया है, और आप अच्छे तरीके से कर लेते हो, आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। और वो यहां तक हुआ, 2011 की एक लेटर जो हम देते हैं, जिसे आप सबको मिला होगा मीटिंग की लेटर, तो मैं उनसे साइन करने के लिए गया, तो बहुत नाराज हो गए मेरे ऊपर। वो कहने लगे कि आप हर बात मुझे क्यों पूछते हो, अंबिका बहन जी हैं, दादी ने आपको बहन जी दिया है, आप उनसे जाकर साइन कराओ। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, अगर आप साइन करते हो आपकी ब्लेसिंग्स मिलता है। वो कहने लगे, आपके बहन है, कोई ब्लेसिंग जरूरत नहीं इसमें, आप बहन को आगे रखो। फिर मैं वापस आ गया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। फिर दूसरी बार मैं गया, उनको समझाया कि भाई साहब ऐसा है, लेफ्ट साइड में बहन जी का साइन रहेगा और राइट में आपका साइन रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका निकाल दिया आपने। तो मैंने कहा, मैं ये सुना हूं कि जो लेटर लिखते हैं वो लेफ्ट में साइन करते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं, जो परमिशन देते हैं, तो वो राइट में करते हैं। आप भी कुछ अलग निकाले। मैंने कहा, अपनी लाइफ में ऐसा ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ा है।
मैंने कहा कि स्पार्क को रिसर्च करना है, तो ये सोच लीजिए कि नया रिसर्च हो गया आपके लिए। तो खुशी की बात है, उनको ये चीज इतने अच्छे लगे साइन कर दिया उन्होंने, तब से हम ये जा रहे हैं। तो ये चीज है कि जैसे बेंज ने कहा कि संभालने की बात है, तो ये तो जरूरी बात है, ये सीक्रेट है, मैं आपको कहना चाहूंगा। जब रमेश भाई की तबीयत बहुत खराब हुआ, जब यहां पे आए, और नागेश भाई जानते हैं, और वो बहुत बड़ी घटना है, वो कैसे हर किसी को यहां योगी बना दिया, ये बात मैं सुनाना चाहूंगा। बड़े जो भी कार्य करते हैं, उनकी जो भी स्थिति हो, वो स्थिति में हम सबको कुछ न कुछ सिखाते हैं, कुछ न कुछ बना देते हैं। रमेश भाई जब तक यहां पे रहे, पूरे शांतिवन कैंपस में एकदम योग का माहौल रहा। और जिस दिन शरीर छोड़ा, तो जो गामदेवी की बहनें थे वो मुझे कह रहे थे कि श्रीकांत भाई आईसीयू रूम में आपको रहना है लास्ट डे में, और नागेश भाई हम दोनों थे योग कर रहे थे। तो मैंने संकल्प किया था, भाई साहब के साथ बात कर रहा था, भाई साहब कुछ करो, मेरे सामने शरीर मत छोड़ना, क्योंकि मतलब मेरे में वो मना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं आपको शरीर छोड़ते देख सकता हूं। और जो कम्युनिकेशन से मैंने किया रात को 9 बजे के बाद से, और ठीक 3:30 बजे मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरा गर्दन बिल्कुल भारी हो रहा है। मैं वहीं सोफे पे योग कर रहा था, लेट गया वहीं पे, सो गया 15 करीब आधा घंटा, मुझे पता नहीं चला। तो हमारे वहां योग की टीम बनी थी, जो आईसीयू रूम के बाजू में योग कर रहे थे, शैलेंद्र भाई यहां के कंस्ट्रक्शन के, वो जब देखा मैं सो रहा हूं, बिल्कुल गुस्सा हो गया। वो अंदर आके बोलता है, श्रीकांत भाई कर क्या रहे हो, आज हमारे लिए चैलेंज का टाइम है, अगर आज हमने ठीक निकाल दिया तो भाई साहब ठीक हो जाएंगे, अगर कुछ हुआ ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जाएगा। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं, मतलब मेरा गर्दन बिल्कुल, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। फिर मैं वहीं से करीब 5 बजे निकल गया, और फिर 7:23 में भाई साहब ने शरीर छोड़ा। तो मुझे लगा कि ऐसा है कि जो सिचुएशन था, अगर मेरे सामने शरीर छोड़ते तो मैं अपने को संभाल नहीं पाता, और मेरे अनुपस्थिति में हुआ। और जैसे भाई साहब ने कहा था कि आपके साथ कोर टीम है, और बहन जी है, जोन सब जोन कोऑर्डिनेटर है, आप सब मिलके करोगे, तो वो चीज पीछे था तो इसलिए संभल गए, अगर सामने होता नहीं संभल पाते।
इस बीच में मैं एक बात और जानना चाहूंगी, आप चाहें तो स्पार्क के लिए जो मैसेज आप देना चाहते हो 1-liner होना चाहिए, उसके बाद हम 5 मिनट लेंगे, और आप लोग अपने मैसेजेस देना चाहें तो जरूर दीजिए।
जब हम श्रीकांत भाई जी से सुन रहे थे, तब मेरे दिमाग में, मैं सोच रहा था, एक कथा याद आई, भागवत की कथा है, और श्रीकांत भाई बड़े प्यार से हम सब लोग हमेशा बोलते हैं छोटी मूर्ति है, मूर्ति छोटी है तो बच्चा जैसे ही रहती है, और वो भागवत की कथा है नरसिंह की, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भक्त प्रह्लाद और नरसिंह अवतार की कथा है, और नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु को जब नरसिंह मारते हैं, फाड़ देते हैं, तब इतने क्रोधित होते हैं कि जैसे आंखों में से अंगार आ रहा है। सब देवताएं उनके तरफ जाने के लिए डरते हैं, बोलते हैं मैं नहीं जा पाती। फिर लक्ष्मी को बोलते हैं कि आप तो बीवी हो, आप जाओ और उनको शांत करो, और फिर भी वो लक्ष्मी नहीं जाती, वो डर जाती है, बोलते ये तो हमारे नहीं है, कुछ दूसरे है। और इतना होने के बावजूद भक्त प्रह्लाद नरसिंह के सामने जाते हैं और बड़े प्यार से उन्हें दृष्टि देते हैं, और जैसी दृष्टि मिलती है नरसिंह शांत हो जाते हैं। हमारा भक्त प्रह्लाद यहां बैठा है, ओम शांति।
थैंक यू भाई जी। अभी मैसेजेस का समय, स्पार्क के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
ओम शांति। मैसेज या एम कहे, मैं सोच रहा था स्पार्क शुड बिकम दी बेस्ट स्पिरिचुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड विच वर्क्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सिंपल सॉल्यूशंस टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दुनिया में, और सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है. ये मुश्किल काम ये स्पार्क करे पूरी दुनिया की सभी सॉल्यूशन को सॉल्व करने की, एंड इट शुड बी दी बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड विच कैन बी रिकॉग्नाइज बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा 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 एवरीथिंग. थैंक यू.
धन्यवाद भाई जी आपकी ऐसी शुभ आशाओं के लिए. और कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? स्पार्क का आगे के लिए लक्ष्य होना चाहिए, कैसे फर्दर चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं?
Om Shanti. Whatever we are sharing here, that should be, I think it should be made in a structured form, and it should be released as a journal or some kind of thing, which can be understandable by the normal public also, so that we will also get their papers also in our journal, and we can also publish some papers, so that it will become a real kind of research institute. So in that way, I think we should progress. Thank you. We are doing, but that should be systemized. Thank you.
Thank you, bhai ji. Hum apne tino bhaiyon ka one more.
ओम शांति. स्पार्क विंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण विंग है, जिसका शब्दशः अर्थ रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, और बाबा चाहते हैं कि ऐसी हम आत्माओं की धारणा और स्थिति हो जिसका प्रभाव सारे विश्व के ऊपर बहुत ही जल्दी पड़ सके और सारा विश्व परिवर्तन हो सके. इसलिए जो रिसर्च है अभी जैसे तीन ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें भी मुख्य रिसर्च ये होना चाहिए कि आत्मा का ज्ञान और उसके प्रभाव का ज्ञान यदि साइंटिफिक वे से हम प्रॉपर मेथड से निकाल सके तो उसका बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव प्रभाव पड़ेगा. अब साइंस में जैसे प्रोसीजर होती है किसी चीज को फाइंड आउट करने की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और उसका वेरिफिकेशन भी कुछ इंडिकेटर या कुछ ऐसे होता है, इस तरह का योग की साधना के ऊपर हम मेथड निकालें बैठ के, तो उसका प्रभाव बहुत ही सहज कृति से समझने लायक सबके लिए होगा. तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे स्पार्क का ये ऑब्जेक्ट जल्दी से ही फुलफिल हो जाए. ओम शांति.
धन्यवाद भाई जी. एक्चुअली नाउ वी आर वो हम नेक्स्ट सेशन में.
Om Shanti. I agree with my colleague for global problems. I suggest now we should have through the spark in global spiritual world parliament for world transformation and oneness of humanity. Thank you.
Dhanyavad bhai ji.
Om Shanti. Aap sabne suna hi, lekin meri ek aas hai, चाहे आप सब मिलकर या श्रीकांत भाई भी है, आज ये है कि शांतिवन में एक बहुत बड़ा स्पार्क का डिपार्टमेंट हो, क्योंकि वो छिपी हुई है, किसी को दिखाई नहीं देती है. और उसमें जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसे अगर सर्टिफिकेट की व्यवस्था हो और कोई पब्लिक आए उसका लाभ ले तो बहुत अच्छा होगा. आप सबकी इच्छा है इसमें, आप सब इसमें क्या करेंगे ये?
जी धन्यवाद दीदी. आप सबके जो भी सजेशंस है डेफिनेटली कोर ग्रुप बैठेगा और उसके बारे में सोचेगा. अभी हम अपने तीनों भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं. और हम संजय भाई जी और नागेश भाई जी से ये प्रॉमिस भी लेंगे कि आप हर साल स्पार्क मीटिंग में हम सबसे मिलेंगे. हम सब मिलना चाहेंगे उनसे हर बार. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. अभी हम ब्रेक पे जाएंगे. थोड़ा सा लेट हुआ है 10 मिनट पर 11:30 वापस हम नेक्स्ट सेशन के लिए आएंगे.
आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
अभी हम एक मिनट प्लीज बैठेंगे और बाबा की याद में सेशन को खत्म करेंगे.